ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆದರಣೀಯ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ರಮಾಕುಮಾರಿ ಉಷಾ ದೀದಿ ಜಿ ಹಮ್ ಸಭಿ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಹೈ. ಹಮ್ ಸಭಿ ಬೇಗೆನ್ಸ್ ಬಹುತ್ 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 ಜೋರ್ದಾರ್ ತಾಲಿಯೋ ಸೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕರೆಂಗೆ. ಆಪ್ ಸಭಿ ಕಾ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಹೋಗಾ ಔರ್ ಜೋರ್ ಸೆ ಔರ್ ಜೋರ್ ಸೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಹನೋ ಸೆ ಅನುರೋಧ ಕರುಂಗಿ ಕಿ ವೇ ಆದರಣೀಯ ದೀದಿ ಜಿ ಕಾ ಬುಕೇಸ್ ಏವಂ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರೆಂಗೆ. ದೀದಿ ಜಿ ಹಾ ಸಭಿ ತಾಲಿಯಾ ಬಜಾಯೆಂಗೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಬಹನಾಕರ್ ಬಹನೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರಿ. ಆದರಣೀಯ ಭ್ರಾತಾ ಬನಾರಸಿ ಭಾಯಿ ಜಿ ಬಿ ದೀದಿ ಜಿ ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ದಿಲ್ ಸೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ ರಹೆ ಹೈ ಸ್ವಾಲ್ ಓಡಾ ಕರ್ಕೆ. ಹಮ್ ಸಭಿ ಬಿ ಉಸ್ಮೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಕರೆಂಗೆ. ಆದರಣೀಯ ದೀದಿ ಜಿ ಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನಾರಸಿ ಭಾಯಿ. ಆಜ್ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ವಿಷಯ ಹಮ್ ಸಭಿ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಆದರಣೀಯ ದೀದಿ ಜಿ ರಖ ರಹೆ ಹೈ, ಜೊ ಹಮಾರೆ ಜೀವನ ಕಾ ಬಹುತ್ ಹಿ ಸುಂದರ ಜಿಸೆ ಹಮ್ ಕಹೆಂಗೆ ಕಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ಕಾ ಏಕ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಾ, ಜಿಸೆ ಕಹಾ ಹೈ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಜೇಷನ್. ದೀದಿ ಜಿ ಕೋ ತೋ ಆಪ್ ಸಭಿ ಜಾನತೆ ಹಿ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೇ ಪೂರೆ ಭಾರತ ಔರ್ ವಿದೇಶೋ ಮೇ ಭ್ರಮಣ ಕರ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ಕಿ ಜಾಗೃತಿ ಹರ್ ಆತ್ಮ ತಕ್ ಪಹುಂಚಾನೆ ಕೆ ನಿರಂತರ ಉನ್ನೋ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಹೈ. ದೀದಿ ಜಿ ನೆ 1974 ಮೇ ರಾಜಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾಓ ಕೋ ಜಾನಾ ಪಹಚಾನಾ ಸಮಝಾ ಔರ್ ಅನುಭವ ಕಿಯಾ. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಇಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸೆ ಪ್ರಭಾವಿತ ಹೋಕರ್ ಉನ್ನೊನೆ 1980 ಮೇ ಅಪ್ನಾ ಪೂರಾ ಜೀವನ ಇಸ್ ಈಶ್ವರೀಯ ಸೇವಾಓ ಮೇ ಸಮರ್ಪಿತ ಕಿಯಾ. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಆಪ್ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರೀಸ್ ಕೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮೇ ಸೀನಿಯರ್ ರಾಜಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಏವಂ ಆಪ್ ಏಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೇನರ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಭೀ ಹೈ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಭೀ ಹೈ, ಏವಂ ಆಪ್ ಆಥರ್ ಭೀ ಹೈ ಔರ್ ಆಪ್ ಏಕ್ ಟಿವಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಭೀ ಹೈ. ಐಸೆ ಹಮಾರೆ ದೀದಿ ಜಿ ಜೋ ಕಿ ಸೋನಿ ಚಾನಲ್, ಜಾಗರಣ ಚಾನಲ್, ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಸ್ಥಾ ಸಾಧನಾ ಚಾನಲ್ ಔರ್ ಆಪ್ ಸಭಿಕೋ ಯೇ ಬಾತ್ ಭೀ ಬತಾತಿ ಹೂಂ ಕಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಭೀ ಆಪ್ಕೆ ರಾಜಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ರೂಪ ಸೆ ಚಲತೆ ಹೈ. ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕುಮಾರಿ ಇಸ್ಕಾ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಜೊ 24 ಅವರ್ಸ್ ಚಲತಾ ಹೈ, ಆಪ್ ಉಸ್ಮೇ ಭೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೇತನಾ ಕಿ ಜಾಗೃತಿ ನಿರಂತರ ದೇತೆ ರಹತೆ ಹೈ. ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಆಪ್ನೆ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೋ ಕೈಸೆ ದೂರ ಕಿಯಾ ಜಾಯ್, ಜೀವನ ಸೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಕೋ ಕೈಸೆ ನಿಕಾಲಾ ಜಾಯ್ ಉಸ್ ಪರ್ ಭೀ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಪ್ರವಚನ ಭೀ ಹೈ ಔರ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೇ ಉಸೆ ಕೈಸೆ ಲಾಯಾ ಜಾಯ್ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಲೋಗೋ ಕೋ ಗೈಡ್ ಭೀ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಆಪ್ಕೋ 2012 ಮೇ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿ ತರಫ್ ಸೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ ಹೈ. ಆಪ್ನೆ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಚೈನಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಜರ್ಮನಿ, ಯುಎಸ್ಎ ಸಭಿ ದೇಶೋ ಮೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ಕಿ ಏಕ್ ಸುಂದರ ಊಷಾ ಬಿಖೇರಿ ಹೈ. ಆಪ್ನೆ ಬಹುತ್ ಸಾರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇ ಭೀ सेल्फ मैनेजमेंट, ट्रस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम किए हैं और आज हम सुनेंगे दीदी जी के द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन। लास्ट में दीदी जी के बारे में एक बात जरूर कहूंगी, जैसे सांझ सूरज को ढलना सिखाती है, जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलाना सिखाती है, मुश्किलें इंसान को चलना सिखाती है। जरा गौर से देखिए हमारी दीदी जी हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो अभी मैं दीदी जी से अनुरोध करूंगी, वे अपना टॉपिक हमारे सामने रखेंगे। आदरणीय उषा दीदी जी।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद धरती बहन, आपने कुछ ज्यादा ही परिचय में कह दिया। वैसे तो हम सभी एक परमात्मा की संतान हैं और संतान होने के नाते एवं सृष्टि रंगमंच पर हरेक का अपना अपना पार्ट है जो हरेक बहुखूबी से निभाता है। आज का जो सत्र है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन तो तभी कर पाएंगे जब सेल्फ को अच्छी तरह से जाना होगा। आप कहेंगे कि हम अपने आप को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप अपने फिजिकल सेल्फ को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। दूसरी सेल्फ है जिसको कहेंगे इनर सेल्फ या स्पिरिचुअल सेल्फ, या जो आपकी रियल आइडेंटिटी है, साइकी जिसको कहा या स्पिरिट जिसको कहा, सोल कहा, एनर्जी कहा, ये विभिन्न नाम दिए गए हैं। लेकिन इतना तो जरूर हर कोई मानता है, जानता है, विज्ञान ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जिसको लाइफ फोर्स कहा जाता है, जिसके शरीर में प्रवेश होने से जीवन आरंभ होता है और जिसके निकल जाने से जीवन समाप्त होता है, उसकी वास्तविकता क्या है। शरीर और आत्मा दो चीज है। शरीर को बहुत अच्छे से हम सभी जानते हैं, लेकिन उस आत्मा की वास्तविकता को अभी और जानने की आवश्यकता है। क्यों जानना है? अच्छा, आत्मा है नहीं है जान करके फायदा क्या? क्योंकि इंसान हमेशा अपना टाइम वहां इन्वेस्ट करना चाहता है जहां से उसको कुछ फायदा मिले, कुछ प्राप्ति मिले। तो आत्मा के ज्ञान से या ये स्पिरिचुअल विजडम से क्या प्राप्ति है? क्यों हम अपना टाइम देना चाहते हैं वहां पर? मुझे महाभारत की बात याद आती है कि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो इतना नर्वस हो गया, डिप्रेस्ड हो गया कि उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा कि आई डोंट वांट टू फाइट। उस समय क्या कहेंगे? अर्जुन का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, गारंटी थी। फिर भी ऐसी मनस्थिति, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम था, तो फिर इस स्टेज को क्या कहेंगे? क्योंकि प्रैक्टिकली अगर जीवन को देखा जाए तो जीवन भी एक संघर्ष है। हर वक्त इंसान को लड़ना पड़ता है, कभी वो अपने आप से लड़ रहा है, कभी वो दूसरों से लड़ रहा है, कभी हालातों से लड़ रहा है, कभी परिस्थितियों से लड़ रहा है। कहां संघर्ष नहीं है? लाइफ इज अ स्ट्रगल, और इतनी चैलेंजेस है जीवन के अंदर कि कोई ना कोई चुनौती के साथ लड़ते 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 कभी जीवन का ऐसा मोड़ भी आता है जब इंसान हताश, निराश, उदास हो जाता है अर्जुन की तरह, और शायद मन ही मन अपनी प्रार्थना में ईश्वर से यही कहता है कि हे प्रभु, कब तक लड़ना है? अब मैं और लड़ना नहीं चाहता। तो ये जब मनस्थिति आ जाती है, जो आज आप सभी दुनिया के अंदर, समाज के अंदर देखते हैं, कितने लोग डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। आज से 100 साल पूर्व कहां इतने लोग डिप्रेस्ड होते थे, कितने साइकेट्रिस्ट होते थे समाज के अंदर, और आज कितने हैं? तो ये बताता है कि दिनों दिन मानसिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो रहा है, और इतना ही नहीं, ये कमजोरी का कारण क्या है? तो जिस प्रकार WHO ने हेल्थ की संपूर्ण डेफिनेशन जो बताई है कि खाली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ की बात नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया है। तो आज देखा जाता है कि व्यक्ति की स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत कम होने लगी, और वो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जब कम होती है, जिस तरह फिजिकल इम्यूनिटी कम होती है, तो उसका प्रभाव देखा जाता है कि थोड़ा सा चेंज इन वेदर हुआ कि सर्दी, जुखाम, बुखार, कोई ना कोई वायरल फीवर आ जाता है। ठीक इसी तरह जब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हमारी कम होती है, तो हर छोटी बड़ी बात का प्रभाव मन के ऊपर जरूर आता है, और मन किसी न किसी रूप से रिएक्ट करता है। वहां शरीर रिएक्ट करता है, यहां मन रिएक्ट करता है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों में टेंशन होना, छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाना, ये क्या बताता है? स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत कम है, अर्थात वो जो साइकी की हेल्थ है उसके तरफ इंसान का ध्यान ही नहीं गया है। अब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा न्यूट्रिशियस खुराक खाने से तो उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसका तरीका भी स्पिरिचुअल है, और इसीलिए भगवत गीता के अंदर जब अर्जुन की ऐसी मनोस्थिति हो गई और उसके मन में इतने सारे प्रश्न खड़े हो गए, तब उसने भगवान से विनती किया, मुझे ये युद्ध नहीं करना है, और इतने सारे सवाल करने लगा। भगवान सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और जब उसके प्रश्न समाप्त होकर के उसने अपने आप को कहा, आप मुझे गाइड करो कि मुझे क्या करना चाहिए, सरेंडर कर दिया। तब दूसरे अध्याय में भगवान ने उसको आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा की शाश्वतता बताई। चौथे अध्याय में परमात्मा ने अपना परिचय दिया, मैं कौन, मेरी वास्तविकता क्या है। छठे अध्याय में राजयोग सिखाया। वैसे तो गीता का हर चैप्टर योग है आज की दुनिया में, लेकिन योग योगा हो गया और योगा सीमित हो गया आसन एक्सरसाइज प्राणायाम यहां तक। लेकिन भगवान ने जब अर्जुन को योग सिखाया, कहीं पर भी आसन नहीं सिखाए, एक्सरसाइज नहीं बताई, प्राणायाम करने के लिए नहीं कहा, फिर भी गीता का हर चैप्टर योग है। तो वो योग कौन सा था जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास पुनः बढ़ जाए, जिससे बड़े से बड़ी चैलेंज लेने की ताकत उसमें आ जाए। कुछ समय पहले मैं कुरुक्षेत्र गई थी और वहां मैंने किसी से पूछा, जब मुझे वहां के ऐतिहासिक स्थल दिखाने ले गए तो मैंने किसी से पूछा कि एक बात ये बताओ कि भगवान ने जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया कितना टाइम लगा 700 श्लोक 18 अध्याय सुनाने में। तो कहा गया कि उसमें कई सारे ओपिनियंस है, कोई 45 मिनट्स कहते हैं, कोई पौने दो घंटे बताते हैं। तो मैंने एनालाइज जो किया कि इसका मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर वो ताकत है कि 45 मिनट्स में कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति को आप मोटिवेट किया जा सकता है बिना किसी दवाई के। ये ताकत है, इसीलिए कहा कि खाली योग, ध्यान योग, मेडिटेशन, आत्मा का ज्ञान इतना ही काफी है किसी को मोटिवेट करने के लिए। ये शक्ति है और इसीलिए आवश्यकता है कि उस आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वयं के अंदर भी हम विकसित करें और हमारे आसपास भी उस वाइब्रेशन को हम क्रिएट करें, या दूसरे शब्द में जिसको कहा जाए वो उस ऑरा को क्रिएट करें। और जब वो ऑरा हमारा विकसित होता है उसके बाद आप देखो क्या चमत्कारिक अनुभव होने लगते हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। योग का सिंपल अर्थ अगर बताया जाए तो योग माना जोड़, संबंध या मिलन। जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, योग माना कनेक्शन। व्यक्ति का कनेक्शन जीवन में कई चीजों के साथ होता ही है। हमारा जब भौतिक चीज वस्तुओं के साथ संबंध है तो हम उसको कहते भौतिक योग है। जब हमारा संबंध समय के साथ होता है और कोई कार्य अचानक समय पर हो जाए तो यही कहते समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। हमारा संबंध इंसानों से है और जब किसी व्यक्ति से समय पर मदद मिल जाती है तो यही कहते ये व्यक्ति का सहयोग था। योग निरंतर है। आज एक बच्चे का योग जब पढ़ाई के साथ है तो वो आगे बढ़ जाता है। जब किसी का कनेक्शन कोई इष्ट देव के साथ है तो उसको कहते भक्ति योग, लेकिन राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग है। सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कहा गया कि जो योग सर्वश्रेष्ठ हस्ती के साथ है, ईश्वर के साथ, सुप्रीम अथॉरिटी के साथ, जिसकी विधि सर्वश्रेष्ठ है और जिसकी प्राप्ति भी सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए उसको राजयोग कहा गया। तो सर्वश्रेष्ठ हस्ती, सर्वश्रेष्ठ विधि और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, जब ये तीनों चीज है तो उसको राजयोग ही कहेंगे। जीवन को अगर देखा जाए, ये जीवन भी एक योग है, जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। अकेला शरीर है तो जीवने नहीं कहेंगे, अकेली आत्मा है तो जीवने नहीं कहेंगे। जीवन माना ही जहां शरीर और आत्मा का कनेक्शन जुड़ा। इस जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह शरीर माना पांच तत्व, और इसीलिए शरीर को जीवन जीने के लिए वही पांच तत्व चाहिए। आज ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। पानी चाहिए क्योंकि 60-70% शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं, भले थोड़ा सा ही बचा हो, कोई कहे ये भी पी जाओ, अरे भाई बस हो गया, एक्सेस नहीं पीते हैं, कल के लिए चलेगा, शरीर स्वीकार भी नहीं करता है। तो ये पांचों तत्व जीवन जीने के लिए आवश्यक है, ये शरीर की वास्तविकता। और इसीलिए कुदरत ने पांचों तत्व सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए एक समान बना दिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया कि भारत वालों को अलग मिलेगा, दूसरे देश वालों को अलग मिलेगा, अमीरों को अलग मिलेगा, गरीबों को अलग मिलेगा, या हिंदू धर्म वालों को अलग मिलेगा, दूसरे धर्म वालों को अलग मिलेगा। नहीं, कोई भेदभाव नहीं, एक समान। इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, क्या आत्मा को भी शरीर में जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? क्या कहेंगे? चाहिए। शरीर को पांच तत्व चाहिए, शरीर में आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? क्या कहेंगे? या समझते हो कि आत्मा निर्लेप है, उसको कुछ नहीं चाहिए? क्या कहेंगे? आत्मा की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। परमात्मा से कनेक्शन चाहिए, अच्छा क्यों चाहिए? क्या मिलेगा परमात्मा से? हाँ, परमात्मा से अच्छा खुद ही मांग ले, वे क्या चाहिए उसको, अच्छी बात है। हाँ, अच्छे संस्कार चाहिए और हाँ इंटेलिजेंस चाहिए। क्यों चाहिए ये सब चीजें? अच्छे संस्कार, इंटेलिजेंस क्यों चाहिए आपको? शांति के लिए, है ना? हर इंसान को शांति चाहिए। और क्या चाहिए? या शांति मिली बस है, बहुत हो गया? प्यार चाहिए। और भी कुछ चाहिए? आनंद चाहिए। और हर इंसान को जीवन जीने के लिए 7 गुण चाहिए, 7 गुण। इसीलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतोगुणी है, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। ये 7 गुण कौन से हैं जो हम भगवान से भी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं? जिस पर शरीर को 5 तत्व चाहिए, कोई भी जाति धर्म देश भाषा वाला, इसी तरह कोई भी आत्मा सारे संसार के अंदर, उसको 7 गुण जरूरी है जीने के लिए। उसमें सबसे पहला जो चाहिए वो है ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। आज एक छोटा बच्चा है ना, अभी बोलना भी नहीं सीखा है, लेकिन अगर वो रोता है और उसके सामने कोई आवाज करने वाला खिलौना रख दो, चुप होकर के जिज्ञासा, ये आवाज कहां से आ रही है? उस उम्र से उसको जिज्ञासा, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल नेचर है ज्ञान की प्राप्ति करना। इसलिए ज्ञान चाहता है, समझना चाहता है। थोड़ा बड़ा होता है, उस आवाज करने वाले खिलौने को तोड़ता है, ये देखने के लिए कि अंदर से ये आवाज कहां से आ रही है। और जब वो आवाज बंद हो जाती तो बड़ा खुश हो जाता है, मैंने बंद कर दिया इसका आवाज, है ना? तो जिज्ञासा उस उम्र से है हर आत्मा की। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है, परिवर्तन हो जाता है विषय, लेकिन जिज्ञासा खत्म नहीं होती। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी होता है, उसके सामने भी कोई ऐसी बात आती है तो उसकी भी जिज्ञासा होती है, ये जानूं, ये समझूं। घर में कई बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने कभी मोबाइल देखा नहीं, किया नहीं, तो भी उनके अंदर जिज्ञासा होती है कैसे करे, है ना, कैसे चलाना होता है। तो भावार्थ ये कि जिज्ञासा भी अंत तक हर इंसान में होती है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल नेचर ज्ञान स्वरूप है। लेकिन इसीलिए बचपन से हमें प्रार्थना सिखाई जाती है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया, ज्ञान बढ़ा या अज्ञान बढ़ा, क्या कहेंगे, ज्ञान बढ़ा या अज्ञान बढ़ा, अज्ञान बढ़ा या ज्ञान बढ़ा, क्या कहेंगे? अज्ञान बढ़ा। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वो है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन लाइफ। तो अगर वो ज्ञान ने इंसान का अहंकार बढ़ाया, अभिमान बढ़ाया, तो ज्ञान कहां है? वो तो अज्ञान ही है। इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि अगर सारे ज्ञान के पुस्तकों को ले आकर के बाहर पाइल अप कर दो, सारी एनसाइक्लोपीडियस सब कुछ अगर पाइल अप कर दो और उसकी होलिका जलाई जाए, तो द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट। और सही में आज वही हो गया है। मनुष्य ने जो ज्ञान हासिल किया, अहंकार की गर्मी जरूर बढ़ गई, व्यवहार में रोशनी नहीं आई, है ना? द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट। व्यवहार में रोशनी नहीं आई, अहंकार की गर्मी बढ़ गई। इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छी बात कही है, वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज एंड वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। आज की दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन बढ़ गया, ज्ञान नहीं है। और जब ज्ञान था तो प्रज्ञा नहीं थी, आध्यात्मिक प्रज्ञा नहीं थी, स्पिरिचुअल विजडम नहीं था। और जब स्पिरिचुअल विजडम था तो और क्या चाहिए था, तब ये भारत इतना उन्नत था। हर प्रकार का ज्ञान अपनी चरम उत्कर्ष स्थिति में था, आज नहीं है। चाहे मेडिकल साइंस हो या एस्ट्रोनॉमी हो या जो भी, उस समय जब नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटीज थी, सारे विश्व से लोग भारत आते थे सीखने के लिए। क्यों? सर्जरी उस समय होती थी, प्लास्टिक सर्जरी उस समय होती थी, तो उत्कृष्ट स्थिति में थी क्योंकि आध्यात्मिक प्रज्ञा थी। लेकिन जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रज्ञा लुप्त होती गई, ज्ञान विकसित होने लगा। और आज की दुनिया में ज्ञान भी लुप्त हो गया, इंफॉर्मेशन रह गया। आज एक एक छोटे छोटे बच्चे के पीठ पर जो बस्ता होता है, कभी कभी सोचते हमने भी पढ़ाई किया लेकिन इतनी तो किताबें नहीं होती थी। आज वो बच्चे के ऊपर क्या हालत हो रही है, क्या उसको टॉर्चर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन इतना बम्बार्डमेंट उसके दिमाग में, और वो बच्चा बड़ा होने के बाद उनके अंदर वो विनय विवेक है ही नहीं। कभी कभी कॉमन सेंस जैसी बातें नहीं होती है। इसलिए कहा, वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज एंड वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो ज्ञान कहाँ है? और अभी इसीलिए वो प्रार्थना भी स्कूल में नहीं कराई जाती, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु, वो प्रार्थना भी कहाँ है? तो सबसे पहले हर इंसान को ज्ञान चाहिए, लेकिन ज्ञान से हम बहुत दूर हो गए हैं इंफॉर्मेशन के युग में, अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चले गए। दूसरा वास्तविक गुण है आत्मा का कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितना प्योर एंड इनोसेंट है। हम सबकी भी वही स्थिति थी, यानी हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी, वी वर प्योर बीइंग्स। हम इतने शुद्ध पवित्र स्टेज में थे। एक बच्चा, उसके लिए कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, सबके आगे मुस्कुराता है। माँ बाप की जिसके साथ दुश्मनी होंगी उसको देख करके भी वो मुस्कुराता है, इज इनोसेंट, इतना बड़ा सेंट है। इनोसेंट, इतना बड़ा सेंट है वो, इसलिए कोई भेदभाव नहीं उसके सामने, हर कोई उसके लिए एक समान है। ये हम आत्माओं की ओरिजिनल स्टेज थी, लेकिन आज उस इनोसेंस से भी कितने समझदार हो गए, कितने दूर चले गए। अनेक प्रकार के बुराई, नफरत, वैर, झेर, पता नहीं क्या क्या अंदर में भर लिया ना, दूर हो गए अपनी वास्तविकता से। Are we comfortable? No, we are not comfortable. उस ओरिजिनल स्टेज में हम बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत कंफर्टेबल, लेकिन उस ओरिजिनल स्टेट से हम बहुत दूर चले गए, जहां अहंकार आ गया, अशुद्धि आ गई जीवन के अंदर, उस जीवन में संबंध में कभी प्रेम पनप सकता है? नहीं पनप सकता। तो तीसरा गुण हर इंसान को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। एक बच्चे को भी प्यार चाहिए और बड़े बुजुर्ग के साथ भी जब कोई प्यार से व्यवहार करता है अच्छा लगता है। ये नहीं कि बड़े बुजुर्गों ने सारा जीवन बहुत प्यार पाया, अब बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा? चलेगा नहीं। हर इंसान को प्यार चाहिए, और वो भी कौन सा? अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल। लेकिन आज दुनिया के अंदर प्रेम की जगह स्वार्थ ने ले लिया है, स्वार्थ आ गया है। आज दुनिया के अंदर प्यार हर एक को चाहिए, लेकिन अगर कोई हमारे साथ बहुत प्यार से बात करना शुरू करे तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, पता नहीं ये इतना प्यार से क्यों बोल रहा है, टेंशन हो गया हमको तो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कोई बहुत प्यार से बात करना चालू करे तो विल यू बी कंफर्टेबल? नहीं। क्या मतलब है पता नहीं। एक छोटे बच्चे से भी आप बड़े प्यार से बात करना शुरू करो तो बच्चा भी क्या कहता है, मतलब की बात करो, क्या करवाना है, कहेगा या नहीं कहेगा? ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि जरूर कोई मतलब है, आज इतनी क्यों मालिश बालिश हो रही है ना। तो हर एक को प्यार चाहिए, लेकिन अनकंडीशनल लव चाहिए, कंडीशन के आधार पर नहीं, निस्वार्थ प्रेम। जहां ज्ञान अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान जहां है वहां अंडरस्टैंडिंग है। ज्ञान को इसीलिए कहा गया समझ, तो जहां ज्ञान है, समझ है, शुद्धि है, निस्वार्थ प्रेम है, वहां शांति है, रिलैक्स्ड। आज इंसान को शांति चाहिए, लेकिन स्मशानी शांति नहीं चाहिए। अगर स्मशानी शांति अच्छी लगती थी तो वहां जाते थे? नहीं जाते हैं। आज इंसान को वो शांति चाहिए कि कर्म करते हुए हमारा मन रिलैक्स्ड रहे, ये शांति चाहती है। और ये शांति का आधार क्या? समझ, ज्ञान, शुद्धि और स्नेह, प्यार, प्रेम, वहां शांति है। जहां ये चारों बातें हैं वहां जीवन का सच्चा सुख है। लेकिन आज सुख सुविधा के सारे साधन है इंसान के पास, डनलप के गद्दे पर सोने के बाद भी चैन की नींद नहीं है, गोलियां लेनी पड़ती है नींद लाने के लिए, नींद कहां है? तो सुख सुविधा के साधन आ गए, लेकिन न सुख है न शांति है। तो इसीलिए कहा हम अपनी वास्तविकता से कितने दूर चले गए, एक भी गुण नहीं रहा, दूर ही जाते रहे। और जहां ये पांचों बातें हैं वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। आनंद उसको सर्वोच्च माना गया, क्यों? क्योंकि आनंद का ऑपोजिट नहीं है, वो इतना स्पिरिचुअल एस्कसी जिसको कहा जाए, वो फीलिंग है जिसको आज हर कोई महान आत्मा भी अनुभव करना चाहता है। इसीलिए बड़े बड़े सन्यासियों ने अपने नाम के पीछे आनंद जोड़ दिया, ताकि ये लक्ष्य याद रहे कि मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये संन्यास मैंने धारण किया उस आनंद की अनुभूति के लिए। कैसे करेंगे? तो कोई ना कोई एक वैल्यू ले लिया, किसी ने सोचा दया की वैल्यू के साथ चलो तो आनंद मिलेगा, तो उसने नाम रख दिया दयानंद। किसी ने सोचा सत्य की वैल्यू को लेकर चले तब आनंद का अनुभव होगा, तो उसने नाम रख लिया सत्यानंद, ताकि हर वक्त कॉन्शियस रहे कि दिस इज द एम ऑफ माय लाइफ। किसी ने सोचा मुक्त रहो तो आनंद मिलेगा, तो उसने कहा मुक्तानंद। किसी ने कहा नित्य आनंद की स्टेज में रहे, लेकिन ऐसे कोई नाम रखने से आनंद मिल गया क्या? मिल जाता है, इतना सहज होता तो बात ही क्या है फिर तो। लेकिन आज आनंद तो छोड़ो, उसकी जो फर्स्ट स्टेप है खुशी, खुशी भी नहीं है, खुशी भी नहीं है। खुशी का अनुभव करने के लिए भी लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करने पड़ते हैं, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है, घर में हंस नहीं पाते। घर में अगर मुस्कुरा दिए तो सबसे पहले घर वाले पूछते क्या बात है, आज इतना मुस्कुरा क्यों रहे हूं। और अगर हम अपनी सीक्रेट डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं और कह दिया बस ऐसे ही क्यों, मुस्कुरा नहीं सकते क्या, तो क्या कहेंगे, आर यू ओके, हाउ कैन यू स्माइल विदाउट अ रीजन, या तो कुछ प्रॉब्लम है ना, आर यू ओके। आज एक बच्चा मुस्कुराता है, कोई उसको पूछता नहीं आर यू ओके, और हमको मुस्कुराने के लिए भी एक वजह चाहिए, है ना? ऐसे मुस्कुरा नहीं सकते हैं। अगर आप ऑफिस गए, अपने कार्य क्षेत्र पर गए मुस्कुराहट लेकर के, तो सारे ऑफिस वाले इशारा करेंगे क्या बात है, आज सर बड़े खुश है, जो काम करवाना है करवा लो, हो जाएगा। लोग एडवांटेज लेना चाहते हैं, इसलिए भी व्यक्ति टाइट होकर के चलता है, हाँ, कहीं कोई एडवांटेज ना ले ले। माना इंसान अपनी नेचुरल स्टेज से कितना दूर हो गया है, कैसी विडंबना है कि जीवन में हम मुस्कुराना चाहते हुए मुस्कुरा नहीं सकते, कहीं कोई उल्टा ना समझ ले कि बिना कारण क्यों हंस रहा है, बिना कारण क्यों मुस्कुरा रहा है, ये हालत हो गई है। और एक बच्चा मुस्कुराता है तो किसी के जीवन के अंदर वो उसका टेंशन खत्म कर दे। एक मुस्कुराते हुए बच्चे को आप उठा लो, एक टेंशन वाला व्यक्ति भी उठा ले, उस वक्त उसकी मुस्कुराहट देख करके वो अपना स्ट्रेस भूल जाता है, भूल जाता है कि नहीं। और हमें मुस्कुराने के लिए टेंशन में आना पड़ता है, इतना टेंशन हो जाता है। अब बताओ बड़े बड़े होकर के हमने क्या पाया और क्या खोया, इसलिए लोग फिर वो गीत गाते हैं, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। कहाँ गई वो बचपन के, लोग वापस इसीलिए बचपन में जाना चाहते, वो दिन कितने अच्छे थे याद करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई स्ट्रेस नहीं था, है ना? ऐसी हमारी अवस्था नेचुरल रूप में थी, ये हमारी नेचुरल आइडेंटिटी है। और जहां ये छह बातें हैं वहां आत्मशक्ति विल पावर है। आज विल पावर तो छोड़ो, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। आज बच्चा एक स्कूल में जाता है पढ़ाई पढ़ने के लिए, सब याद करता है, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करता है, जाता है एग्जाम पेपर देख करके नर्वस हो गया, सब कुछ भूल गया, ब्लैंक हो गया, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। अब आप सोचो ये उसकी हालत हो तो उसका फ्यूचर क्या है। इसलिए सुसाइड कर लेता है अपना फ्यूचर जब अंधकार में देखता है तो। आत्मशक्ति नहीं रही, विल पावर नहीं रहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहा। तो ये सात गुण ये हमारी रियल आइडेंटिटी है, लेकिन आज इस आइडेंटिटी से हम बहुत दूर हो गए और एक ऐसी पर्सनालिटी में आ गए हैं कि जहां हम खुद भी कंफर्टेबल नहीं है उस पर्सनालिटी में। इसीलिए माइंड बॉडी का कनेक्शन है। अगर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी ही हमारी नहीं रही तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्या होगी? और जब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी नहीं है तो मन की स्थिति क्या होगी? और मन की स्थिति ही अच्छी नहीं है तो उसका शरीर बीमार नहीं होगा तो क्या होगा, बताओ? इसलिए आज हर कोई बीमार है, कोई तन से बीमार है, कोई मन से बीमार है, क्योंकि हर एक की साइकी बहुत अशुद्ध स्थिति में पहुंच गई है, कहीं पर भी शुद्धि नहीं रही है, वो प्योरिटी नहीं रही है। और इसीलिए आज स्ट्रेस अनेक बीमारियों का 70% ऑफ द डिजीज आर ड्यू टू साइकोसोमेटिक रीजन। क्यों कहा ये बात? तो सात गुण ये आत्मा की बैटरी है, दूसरे शब्द में कहूं तो ये सात गुण आत्मा की बैटरी है, लेकिन आज के युग में ये बैटरी डिस्चार्ज है। अब उसको चार्ज कैसे करें? चार्ज तो करना पड़ेगा ना। अगर हमें टोटल हेल्थ चाहिए, स्पिरिचुअल हेल्थ भी चाहिए, तो बैटरी को चार्ज करना जरूरी है। एक मोबाइल को भी रोज चार्ज करना पड़ता है। और लास्ट हमने ये साइकी की बैटरी को कब चार्ज किया था? सोचो, कभी चार्ज किया लाइफ में? लास्ट कब चार्ज किया? वैसे हमने भिन्न भिन्न तरीके अपनाए अननोइंगली चार्ज करने के लिए। कौन से तरीके अपनाए? सबसे पहला तरीका अपनाए अपेक्षा, संबंधों में अपेक्षा। ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे खुशी दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, इंसानों से अपेक्षा रखी। मिल गया? मिल गया? हमने क्यों अपेक्षा रखी? क्योंकि मेरी बैटरी डिस्चार्ज है तो मैंने दूसरे से अपेक्षा रखी। लेकिन जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है मैं भूल जाती हूँ, उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज बैटरी, डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज करेगी, बताओ? और इसीलिए अपेक्षा रखने पर नहीं मिला, कितना फ्रस्ट्रेशन आता है, कितना क्लैशेस होते हैं। और फिर क्या कहते हैं? हमने थोड़ा सा प्यार ही तो चाहा, क्या इतना भी हमारा अधिकार नहीं है? इतना भी प्यार नहीं दे सकते? थोड़ा सा सुख ही तो चाहा, और कुछ थोड़ी चाहा, कोई धन दौलत महल माड़ी थोड़ी, थोड़ा सा सुख चाहा, इतना भी नहीं दे सकते? लेकिन अगर हो तब तो दे, उसकी बैटरी भी कंप्लीट डिस्चार्ज है, कैसे देगा वो? वो कहेगा मेरे को आपसे अपेक्षा है, आप मेरे साथ प्यार से रहो, आप मेरे। अब दोनों एक दूसरे से यही अपेक्षा कर रहे हैं तो कितने परिवार टूट रहे हैं, कितने रिश्ते टूट रहे हैं। और दिनों दिन सिंगल्स का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। लोग सोचते हैं कि इसे तो सिंगल रहना ही ठीक है ना, क्योंकि अपेक्षा रखने से नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए पहला तरीका फेल हो गया, समझा। दूसरा तरीका अपनाया कौन सा, कर्म करो, इसलिए लोग वर्कोहॉलिक होने लगे हैं। कर्म करने से हमें खुशी मिलती है, कर्म करने से हमें सुकून मिलता है। कर्म करो तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। आज लोग धन कमाते, किस लिए धन चाहिए, धन चाहिए किस लिए, धन चाहिए सुख शांति से जीने के लिए। सोचा धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे। अरे करोड़पति को पूछ लो, सुख शांति आ गई, क्या कहेगा? यही तो प्रॉब्लम है कि धन तो आ गया, सुख शांति नहीं आई। कुछ समय पहले मेरा बॉम्बे में प्रोग्राम था और प्रोग्राम में एक व्यक्ति आया था। वो प्रोग्राम के बाद मुझे मिला और कहने लगा कि मुझे जीवन में ये समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहा कि मैं 3 बार डिवोर्स हो चुका हूँ और अभी अकेला रहता हूँ। मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन और इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कि मेरे जो क्लाइंट्स है या मेरा जो रिश्ता है देश विदेश में लोगों के साथ है और बहुत अच्छे से मेरा रिश्ता उनके साथ है। आज भी बिजनेस रिलेशंस मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ गलत हूँ कि 3 बार डिवोर्स होने के बाद आज मैं अकेला हूँ, कोई बच्चा भी मेरे साथ रहना नहीं चाहता है। तीनों वाइफ के साथ जो बच्चे हैं वो भी मेरे साथ नहीं है। मैं कहाँ गलत हो गया, ये हाल है। और कहता है मैं बहुत सक्सेसफुल इंसान रहा। अब सक्सेसफुल कहेंगे उसको, जहे बुजुर्ग अवस्था में अकेला रहना पड़े उससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? कोई सजा नहीं है उसके, क्योंकि इतनी बैटरी डिस्चार्ज है। तो इंसान धन कमा लेता, उसने कहा जितनी प्रॉपर्टी है, इतना धन है मेरे पास, लेकिन किसके साथ बैठकर मैं एंजॉय करूं? मेरी प्रॉपर्टी किसी को नहीं चाहिए, मेरा धन किसी को नहीं चाहिए, मेरे तीनों वाइफ के जो बच्चे हैं वो भी मना करते, नहीं चाहिए हमको आपका धन, मना कर गए सब। तो धन खुशी कहां दे रहा है? खुशी मिली है ना, तो इसीलिए कहा करोड़पति को पूछ लो सुख शांति आई नहीं आई, क्योंकि धन कोई माध्यम नहीं है आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का, इसलिए नहीं आई। दूसरा, कई लोग समाज सेवा करते, पूछो समाज सेवा क्यों करते हैं? कहते आनंद मिलता है। पूछो आनंद मिला तो क्या कहेंगे? अरे बहुत पॉलिटिक्स से आनंद कहा, हमने सोचा लायंस ज्वाइन करेंगे, रोटरी ज्वाइन करेंगे तो हम समाज सेवा करेंगे, हमको आनंद मिलेगा। आनंद कहा, इतना पॉलिटिक्स चलता है, आनंद कहा? कई लोगों ने सोचा सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाना चालू किया कुछ ज्ञान प्राप्ति हो जाए, है ना? लेकिन सत्संग सुनने के बाद घर में आकर के एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करना, ये भी ज्ञान नहीं आता है, जिसके कारण बच्चे भी कभी कभी माँ बाप से कहते हैं आप ज्ञान सुनने गए थे ना, यही सुन के आए क्या, यही सुना क्या? है ये हालत कि नहीं है? तो इतने सत्संग आज इतने कथावाचक दुनिया में हो गए, इतनी कथाएं हो रही है, सुन करके आते हैं, लेकिन ज्ञान आया ही नहीं है। कई लोग गंगा स्नान करने जाते, पूछो गंगा स्नान क्यों करते? कहते आत्म शुद्धि के लिए। अच्छा आत्म शुद्धि हो गई, इतनी सहज विधि हो तो फिर तो जेल बनाने की जरूरत है क्या? सारे क्रिमिनलों को ले जाकर डुबकी लगवा दो, छोड़ दो, शुद्ध हो गया। तो विभिन्न तरीके, विभिन्न कर्म किए बैटरी चार्ज करने के लिए, हुई, ये तरीका भी फेल हो गया। तब तीसरा तरीका अपनाया कौन सा? भगवान को याद करो, ही इज द सोर्स। इसलिए भगवान से हमने यही सात बातें मांगी। सबसे पहले कहा ज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। दूसरा कहा मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे प्रभु तू साफ कर देना, मैलापन बहुत है साफ कर दो, है ना? भगवान भी पूछता है कब तक, कब तक मैं साफ करता रहूं, कब तक तुम मैले होते रहोगे। अब भगवान ने भी छोड़ दिया साफ करना का, जाने दो, तुमको सुधरना नहीं अब मेरे को साफ करना नहीं है ना। तीसरा कहा तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, भगवान एक बूंद भी मिलेगी ना तो जीवन जीने के लिए काफी है। चौथा कहा हमको मन की शांति देना, रोज प्रार्थना की हमको मन की शांति दो, मांगते रहे हम ईश्वर से, जब नहीं मिला तो उसका उसको उसका कर्तव्य याद दिलाया। क्या कहा? हे प्रभु तू तो हरि है, मेरा दुख हरो सुख दो, तू हरि है, उसको याद दिला रहे हैं हम, मेरा दुख हरो, हे प्रभु तू सच्चिदानंद स्वरूप है आनंद दो, उसको याद दिलाया, ये तेरा कर्तव्य है, ये तेरा टाइटल है। फिर भी जब नहीं मिला तो लास्ट में धमकी दे दी, क्या कहा? इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कभी कम न हो, यानी अगर मेरा विश्वास कम हो गया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि तुमने मुझे शक्ति नहीं दिया, है ना? धमकी दे दी ना। अनजाने पन में प्रार्थना भी ऐसी बनाते हैं जो हमें पता ही नहीं हम क्या कह रहे हैं ईश्वर से, मांग रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और बड़े खुशी खुशी से गा रहे हैं, इतनी शक्ति देना हमें दाता जो विश्वास कभी कम न हो, है ना? तो कहने का भावार्थ, ये सात गुण को प्राप्त करने के लिए रोज भगवान से प्रार्थना करते रहे। मिल गई? अरे कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर वाला फेंकेगा और हम रिसीव कर लेंगे, नहीं। इसलिए तीनों तरीके जो हमने अपनाए अननोइंगली बैटरी चार्ज करने के फेल हो गए। आज हम आपको दो तरीके सिखाएंगे बैटरी चार्ज करने के। रेडी? सब लोग रेडी है बैटरी चार्ज करने के लिए? पहला तरीका, बैटरी चार्ज करने के लिए गाड़ी की बैटरी को चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? गाड़ी को चलाते रहो, जितनी चलेगी बैटरी चार्ज रहेगी। ला करके अगर गैराज में रख दिया, साल दो साल तक उसको हाथ नहीं लगाया, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक इसी तरह अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे देना होगा, लेट इट फ्लो। आपको प्यार चाहिए, आपको दूसरों को प्यार देना होगा। इसीलिए कहा जाता है व्हाट यू गिव यू गेट, आपको जो चाहिए वो आपको देना होगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये स्पिरिचुअल लॉ है कि बैटरी चार्ज करनी है तो आपको देना होगा। देखो इस संसार में हर चीज दे रही है, प्रकृति के पांचों तत्व दे रहे हैं, सूर्य दे रहा है, वायु दे रहा है, इंद्र दे रहा है, इतना ही नहीं लेकिन जो कुदरत की बनी हुई चीजें हैं वो भी दे रही है, है ना? इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर वो कविता लिखी है पेड़ न खाए अपना फल, नदी न पिए अपना जल, ये सब देने के लिए है। और जितना ये देता जाता है उतना उसमें बढ़ता जाता है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। बांटना चालू करो, जितना बांटते जाएंगे बढ़ता जाएगा, ये कुदरत का नियम है। हमने क्या किया, बांटना बंद कर दिया, हम लेने लग गए। प्रकृति के पांचों तत्व से भी ले रहे हैं, कुदरत की रचना से भी हम ले रहे हैं, वहां तक कि मनुष्य की बनाई हुई चीज भी दे रही है। आज जिस कुर्सी पर आप बैठे हो ये कुर्सी आपको आराम दे रही है। अगर कुर्सी निकाल दिया जाए नीचे बैठने के लिए कहे तो क्या होगा, 10 मिनट के बाद हिलना डोलना चालू हो जाएगा, घुटना दर्द कर रहा है, ये कब पूरा होगा, ये कब पूरा होगा, कितने विचार चलते हैं, वेस्ट थॉट्स चलना शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। कितनी भी अच्छी बातें सुनाओ सुन सकेंगे नहीं, नहीं आया, दूसरे सेशन में आना ही नहीं है, बाहर इसे तो घूमो अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना। तो ये कुर्सी आराम दे रही है, ये माइक दे रहा है, ये लाइट दे रहा है, ये फैन दे रहा है, मनुष्य की बनाई हुई चीज भी दे रही है। इसलिए कुदरत की बनाई हुई चीज को जब वो दे रहा है तो उसको देवता का, इंद्र देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, सब अग्नि देवता सब दे रहे हैं, है ना। कुदरत की बनाई हुई चीज भी, नदियों को भी देवी का रूप दिया, सारी नदियों के नाम देखो देवियों के ऊपर है, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सभी देवियों के नाम से, देवियों के नाम से उसको पूजा जाता है। और तो कुदरत की रचना भी देवता है, तो मनुष्य की रचना भी आज दे रही है तो ये भी देवता हो गए, देने वाला माना देवता। और एक इंसान है जो ले रहा है ले रहा है ले रहा है और उस प्रोसेस में देना भूल गया, तो ये सब देवता हो गए और इंसान लेवता हो गया, है ना। अब लेवता जब हो गए, बस मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ये फीलिंग जब आ जाती है और देना नहीं है बांटना नहीं है। आज एक छोटे बच्चे को भी आप खिलौना दो और कहो तुम अपने ये फ्रेंड के साथ बांट के खेलो, क्या कहेगा, नहीं मेरा है ये तो नहीं बांटना है, भले नहीं खेलेगा लेकिन नहीं बांटना है। ये साइकोलॉजी देखो, देना ही भूल गए हम, इतना लेवता हो गए। अब जब लेवता हो गए तो बैटरी चार्ज होगी कि डिस्चार्ज होगी, है ना। इसलिए आज के बाद देना चालू करें, देकर के तो देखे क्या मिलता है। अच्छा, खुशी किस में मिलती है, लेने में मिलती है देने में मिलती है, हाँ लेने में भी मिलती है, कोई अच्छी गिफ्ट देता है तो क्यों नहीं अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देने में ज्यादा खुशी है या लेने में ज्यादा खुशी है, हाँ देने में ज्यादा खुशी है तो दे करके तो देखे क्या क्या होता है। किसी के खुशी दे, किसी को ज्ञान की कोई मोटिवेट करने की बातें दे, किसी को हम सम्मान दे, बहुत कुछ दे सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कोई चीज वस्तु ही देना है, किसी को सहयोग दे, किसी को शुभ भावना दे, किसी को दुआएं दे, देखो क्या होता है। एक कहानी बहुत सुंदर याद आती है कि एक बार एक राजा था और वो बहुत ट्रैवलिंग करता था, देश विदेश जाता था। अब जहां जाता था तो वहां से उसको बहुत अमूल्य तोहफे मिलते थे, तो इतने तोहफे हो गए, अब महल में रखे कहां, सारा महल ही भर गया उसका तोहफों से, और बहुत बढ़िया बढ़िया तोहफा था। अब क्या करे, तो लोगों से पूछा इसको क्या करे, अब इतने तोहफे हो गए तो क्या करे। तो किसी ने कहा म्यूजियम बना देते हैं, कहा नहीं म्यूजियम नहीं बनाना है, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि ये तोहफा मैं अपनी प्रजा को दे दूं, गिफ्ट के रूप में सब लोग संभालेंगे, अपनी जेनरेशंस को भी बताएंगे कि हमारा राजा ने देखो क्या दिया था। तो सबको आइडिया तो अच्छा लगा, तो राजा ने ऐलान करवाया कि भाई संडे के दिन राजा ये तोहफा बांटेगा और जिसको भी चाहिए वो लाइन लगा दे। तो संडे के दिन देखा बहुत लंबी लाइन हो गई थी तोहफा लेने के लिए कि भाई राजा का तोहफा इतना अमूल्य होगा तो उसको तो ले लेना चाहिए, तो बहुत लंबी लाइन हो गई। अब जब राजा देना उसने आरंभ किया संडे के दिन देना शुरू किया तो लेने वाला क्या कहेगा, राजन आप जुग जुग जियो, बड़ी लंबी उम्र हो, भगवान आपको सदा खुश रखे, भगवान आपको सदा सुखी रखे, है ना, आपको सबका प्यार मिलता रहे। इतनी दुआएं मिल रही थी, हर कोई उसको जैसे ही वो देता था तो लेने वाला उसको कोई ना कोई दुआ देता था, और वो दुआएं प्राप्त करते हुए चेहरे का भाव कैसा होगा, कैन यू इमेजिन, चेहरे का भाव इतना आत्म तृप्ति का, प्रसन्नता का, खुशी का, है ना। तो उस लाइन में एक फकीर था, वो फकीर जब राजा का ये भाव देखता था ना, इतना प्रसन्न, इतना संतुष्ट, कितनी आत्म संतुष्टि प्रसन्नता उसके चेहरे पर है, कितना आनंद है। तो फकीर ने सोचा ये आनंद मैं अनुभव करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं। तो अपने आप में सोचने लगा कि मना ये जो उसको अनुभव हो रहा है ना, ये देने के बाद हो रहा है, तो मैं क्या दूं जो मैं मुझे भी अनुभव हो। उतने में उसका टर्न आ गया, लगभग एक दो रह गए थे, तो उसने पीछे वाले को कहा आप आगे जाना चाहेंगे, कौन नहीं जाना चाहते हैं, कहा जरूर जाएंगे। अब जो जाता था ना वो भी क्या कहता था, भगवान आपको भी सदा खुश रखे, है ना। तो उसको बड़ा अच्छा लगा, ये तो अच्छा तरीका है। तो उसने पीछे वाले को कहा आप आगे जाना चाहेंगे, कहा जरूर जाएंगे, वो भी उसको दुआ देता गया। तो उसको भी वो बड़ा प्रसन्न होने लगा, बड़ी खुशी मिलने लगी। अब जब सबको बढ़ गया, वो फकीर ने कुछ लिया है नहीं, चला गया, उसने जो अनुभव करना था वो तो कर लिया, तो चला गया वो। तो राजा ने अपने गुप्तचरों से कहा जरा नगर में जाकर देखो तो सही, लोग मेरे लिए क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, गुप्तचर गए तो नगर में हर कोई बात कर रहा था कि हमारा राजा कितना अच्छा दिल वाला है, कितनी बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट दिया उसने, है ना, बातें कर रहे थे, सब प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन कहा कि उसमें एक फकीर भी था उस लाइन में, उसने कुछ नहीं लिया लेकिन वो अपना टर्न दूसरों को देता गया, आगे करता गया, तो उसकी भी प्रशंसा हो रही थी। तो गुप्तचरों ने जब ये बात सुनी तो आकर के राजा को सुनाया कि आपकी तो खूब प्रशंसा हो रही थी लेकिन आपके साथ साथ एक फकीर की भी प्रशंसा हो रही थी। राजा को बड़ा कि उसने क्या दिया, का कुछ नहीं, उसने अपना टर्न दिया दूसरों को। तो राजा ने कहा ये कैसे हो सकता, उस फकीर को ले आओ। कहा अभी वो कहां मिलेगा, कहां चला गया होगा, क्या मालूम। तो राजा ने कहा दोबारा ऐलान करो, दूसरी गिफ्ट्स में बांटूंगा, जिसको चाहिए वो आकर के ले ले। तब तो वो फकीर आएगा, वो फकीर जैसे ही आ गया लोगों को अपना टर्न देने लगा। राजा ने लाइन को रोका, उस फकीर को बुलाया, इधर आओ इधर आओ, तेरे को जो चाहिए ना लेके जा, लेकिन ये टर्न बांटना बंद कर। तो फकीर ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। का क्या चाहिए था, तो कहा राजन जब आप दे रहे थे ना तो आपका चेहरे पर जो प्रसन्नता थी, जो आनंद था, जो सुकून था, मैं उस चीज को अनुभव करना चाहता था, लेकिन मेरे पास तो कुछ था नहीं, इसलिए मैं अपना टर्न ही दूसरों को दे रहा था और उसमें मुझे मिल गया, मुझे ये चीज वस्तु नहीं चाहिए। भावार्थ ये, आप देना चालू करो, देखो कितना सुकून मिलता है, कितनी प्रसन्नता मिलती है, कितनी दुआएं मिलना शुरू हो जाती। चीज वस्तु न दो, उससे उसके सिवाय भी बहुत कुछ है देने का। वो देना चालू करो, देखो आत्मा की बैटरी चार्ज होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। जब आप किसी व्यक्ति की फ्री में सेवा भी करते हैं तो चार्ज होती है कि नहीं, वो दुआएं देके जाता है कि नहीं देके जाता है। तो इसीलिए भावार्थ ये कि आप निस्वार्थ भाव से जब भी करते हैं, आपको उस दिन रात को बहुत अच्छी सुकून की नींद मिलती है, बड़ी प्रसन्नता आपके जीवन में होती है, चार्ज रहते हैं आप। ये अनुभव किया है आपने। तो पहला तरीका है बैटरी चार्ज करने का, देना चालू करो। किसी को सम्मान दो, किसी को खुशी दो, किसी को मोटिवेट करो, किसी को शाबाशी दो, किसी को शुक्रिया दो, ग्रैटिट्यूड, देना चालू करो और फिर देखो कितना आपको मिलता है, कितना मिलता है, कितना अंदर से समृद्ध होते यह आप महसूस कर सकेंगे। जो कहेंगे कि हम देना चालू करते हैं कुछ ना कुछ आज से लेकर के, जरा हाथ तो खड़ा करो, आज से देना है बस, है ना? वेरी गुड। इतने देवता अगर धरती पर प्रकट हो जाए फिर तो ये धरती का कल्याण होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए कहा इसने, देवता अगर आपके शहर में भी आप चले जाओ, एक देवता ही काफी है। और सचमुच लोग तो वैसे भी आपको भगवान का दूसरा स्वरूप मानते हैं, और आप साक्षात में अगर देवता बन जाएंगे तो कहना ही क्या, बैटरी चार्ज रहेगी या नहीं रहेगी, कभी डिस्चार्ज होगी ही नहीं। देखो कितनी खुशियां मिलती है। तो ये पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका है, कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। चिंतन की क्वालिटी क्या है ये देखो, यू आर व्हाट यू थिंक। जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपके जीवन का, जीवन की क्वालिटी होगी। नेगेटिव सोचने के बाद कभी खुशी मिलेगी? नेगेटिव सोचने के बाद कभी प्यार बनेगा? किसी के साथ प्यार भरा संबंध बनेगा? वेस्ट सोचने के बाद, व्यर्थ सोचने के बाद क्या आपको आनंद मिलेगा? नहीं मिलता है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो इसीलिए आज से आत्मचिंतन करना शुरू करो। आत्मचिंतन करते ही आत्मा के अंदर वो शक्ति भरने लगेगी, क्योंकि ये सातों गुण खाली गुण नहीं है, शक्ति है। पावर ऑफ विजडम, पावर ऑफ प्योरिटी, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ हैप्पीनेस, ये सारे पावर्स हैं। और जितना आप उसका चिंतन करते जाएंगे वैसे वैसे बनते जाएंगे। कोई अगर नेगेटिव सोचता है मैं ये कर ही नहीं सकूंगा, मैं ये कर ही नहीं सकूंगा, तो कभी नहीं कर सकता है। एमबीबीएस की एग्जाम में पास कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता है तो कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति जिस क्वालिटी का सोचता है वैसा बनता जाता है। तो इसीलिए आप अपनी क्वालिटी को चेंज करो, स्पिरिचुअलाइज कर दो अपने विचारों को। और जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू करेंगे, वैसे आज की दुनिया में जागृति जरूर है, पॉजिटिव सोचो, है ना, बी पॉजिटिव। एक दूसरे को हम सलाह देते हैं जब कोई टेंशन में होता है, उसका चेहरा देखकर कहेंगे क्या बात है, बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन ये दूसरों को सलाह देने तक, जब खुद के सामने कोई परिस्थिति आती है और हम नेगेटिव सोचने लगते क्या होगा, क्या होगा, डर, असुरक्षा महसूस होने लगती है, जब नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप देखो अपना आत्मविश्वास क्षीण हो जाता है। नेगेटिव सोचने के बाद अगर वो व्यक्ति याद दिलाए हमें कि हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे, बी पॉजिटिव, अब तुम्हारा क्या हो गया, तो हम क्या कहेंगे? वी नेवर रियली एडमिट कि हाँ हम भी नेगेटिव सोच रहे हैं। हम क्या कहते हैं? मेरी बात अलग है, तेरी बात अलग है। तेरे केस में तो आज भी हम कहेंगे तुम नेगेटिव सोच रहा था, मैं तो प्रैक्टिकल सोच रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल, है नेगेटिव। और क्या कहते हैं? आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल। वी नेवर रियली एडमिट। तो इसीलिए बी पॉजिटिव ये दूसरों को सलाह देने तक है, खुद के लिए नहीं। लेकिन ये 3 दिन की माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में आप कम से कम अपने अंदर खुद भी पॉजिटिव क्वालिटी के सोच अपनी बना करके देखेंगे। और उसमें सबसे सहज तरीका है आत्मचिंतन से आरंभ करो, ये फर्स्ट स्टेप है। जब आत्मचिंतन शुरू करेंगे तो आप खुद भी देखेंगे कि आपके अंदर भी वो सारी शक्तियां जनरेट होने लगेगी, वो ऊर्जा बढ़ने लगेगी और आपको पुनः ऊर्जावान बना देंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके आज बताए, कल सुबह आपको तीसरा तरीका बताएंगे, बैटरी चार्ज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते, थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, रिलैक्स्ड होकर के बैठो, लेकिन अलर्ट भी रहो क्योंकि 12 बजे का टाइम हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा रिलैक्स बैठेंगे तो दूसरी अवस्था में पहुंच जाएंगे, फिर हम पूछेंगे भाई शांति महसूस हुई, तो कहेंगे बड़ी शांति थी, लेकिन वो शांति निद्रा की शांति थी। हमें राजयोग की शांति का अनुभव करना है, निद्रा की शांति का अनुभव नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए स्वस्थ होकर के बैठो, पीठ सीधी हो एकदम, और हम आपको विचार देते जाएंगे। आप अपने मन को खाली उन विचारों को रिपीट नहीं करना मन के अंदर, लेकिन मन को उन भावों में ले जाना, महसूस करना, फील करना, और फील करते हुए उस ऊर्जा को अंदर में जनरेट करना। तो कुछ क्षण के लिए स्वयं को, बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। स्वयं को आत्मभाव में स्थित करें, अंतर चक्षु से स्वयं को देखें, मस्तिष्क के मध्य में मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, ये शरीर मेरा वस्त्र है, जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपने पात्र निभाने। मैं आत्मा शरीर की कर्मेंद्रिय का मालिक हूं, अधिकारी, धीरे धीरे अपने मन को ले चले एक यात्रा पर, अपनी वास्तविकता की ओर। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध पवित्र हूं। मेरा स्वरूप दिव्य प्रकाशमान है। मैं आत्मा ज्योति पुंज हूं। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। कितना दिव्य अलौकिक है। पवित्रता की ऊर्जा को प्रवाहित करती हूं। शरीर के रोम रोम में इस ऊर्जा को प्रवाहित होने देती हूं। मैं आत्मा अपने गुण धर्म में स्थित हूं। मेरा गुण धर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। शांति मेरी वास्तविकता है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन को महसूस कर रही हूं। मेरा मन और तन शांत है। शीतलता का प्रवाह स्वयं में महसूस कर रही हूं। कितना सुकून अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा सुख स्वरूप। शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। इसी शांति में परमानंद है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप। खुशी मेरी वास्तविकता है। जब खुशी की स्थिति है कितना हल्कापन महसूस होता है।
मैं सच्चित आनंद स्वरूप इसी शांति में शक्ति समाई हुई है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप हूँ। सतोगुणी स्वरूप हूँ। सातों गुणों की ऊर्जा को स्वयं में महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा सातों गुणों की ऊर्जा से सशक्त होती जा रही हूँ। ये मेरी वास्तविकता है। धीरे धीरे मैं वर्तमान समय में प्रकृति के मध्य में स्वयं को देख रही हूँ। और निरंतर जो भी मेरे सन्मुख आए उनको ये प्रवाह कहा। अनुभव कराना है। ओम